अगले दिन सवेरे सब नाश्ता कर रहे थे कि एमा के पास एक कॉल आया। बात करने के बाद वो वापस आई, उसके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। क्या हुआ? निक ने उसे मायूस देखकर पूछा। एक गुड न्यूज़ है तो एक बैड न्यूज़ भी। मिस्टर मुखर्जी ने हमें डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए परमिशन दिलवा दी है, लेकिन सुनहरी ने किसी वजह से हमें दो दिन बाद आने को बोला है। शायद हम लोग वहां जा रहे हैं इसलिए उसने ऐसा किया होगा, अंक ने अंदाज़ा लगाते हुए कहा। मैंने वहां एक शॉप रेंट पर ले ली है, लेकिन उससे पहले मुझे उसके लिए सामान वगैरह खरीदने के लिए जाना होगा। मुझे नहीं लगता कि मैं आज ही जन्नत बाजार तक पहुंच पाऊंगा, जैन ने कहा। कोई बात नहीं, जिसको जिस हिसाब से वक्त मिले उस हिसाब से सेटलमेंट कर लेंगे। अभी हम लोग वहां के लिए निकल रहे हैं, अंक ने कहा। जैन, आलिया और एमा घर पर ही काम देख रहे थे, जबकि निक, अंक और रॉन जन्नत बाजार जाने के लिए निकल पड़े। वहीं जन्नत बाजार में उन लोगों के आने की खबर पहले ही पहुंच चुकी थी। सुनहरी और रूपाली बैठकर इस बारे में बात कर रही थी। बात करते हुए रूपाली सुनहरी को तैयार कर रही थी। सुनहरी ने कहा, उन्होंने हमारी बात तो मान ली, इस बीच हमें ये भी पता चल जाएगा कि वे सच में जन्नत बाजार को खरीदना चाहते हैं या ऐसे ही हवा में बात कर रहे हैं। हाँ, एक बार के लिए तो मुझे लगा था कि वे लोग मना कर देंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी खर्चा होने वाला है, रूपाली ने जवाब दिया। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन वे लोग यहाँ रहने आ रहे हैं ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई। इसमें दिक्कत क्या है ताई? माना कि इससे पहले हमने जन्नत बाजार में किसी और को नहीं रहने दिया, लेकिन अब वो लोग पैसे लगा रहे हैं तो उनका इतना हक तो बनता ही है, रूपाली ने सुनहरी के बाल बनाते हुए कहा। सुनहरी ने कहा, अरे उनकी बुरी नज़र है मेरी जन्नत पर, ये सुनहरी सब कुछ सह सकती है लेकिन जन्नत के ऊपर बुरी नज़रें नहीं, रूपाली ने मुंह बनाते हुए कहा। सुनहरी ताई, आप उस जन्नत को कुछ ज्यादा ही भाव नहीं देती, वैसे भी वो जन्नत कौन सी हूर परी है। अरे वो साहब भी तो दिखने में कितना हैंडसम है, उसे तो कोई भी मिल जाएगी, फिर क्यों तेरी जन्नत के पीछे आएगा वो। मुझे इन सब से कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों पर नजर बनाए रखना, कहीं वे लोग मेरी जन्नत को कोई नुकसान न पहुंचा दें, बोलते हुए अचानक सुनहरी ने अपनी आवाज़ थोड़ी धीमी की और आगे कहा, जानती है ना, ये जन्नत बाजार बाहर से दिखने में जैसा है, अंदर इसकी सच्चाई कुछ और भी है, उन्हें इस बारे में भनक भी नहीं होनी चाहिए। रूपाली ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर कुछ सोचते हुए आगे कहा, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुमने एक बार फिर उन डॉक्यूमेंट्री बनाने वालों को हाँ क्यों कहा? पिछली बार भी क्या बकवास सा फिल्म बना कर गए थे? अरे छोड़ना, इसी बहाने उनका और यहाँ रह रही लड़कियों का भी दिल बहल जाता है, सुनहरी ने हंसते हुए कहा। वे दोनों बात कर ही रही थी कि तभी वहां एक लड़की आई और उसने उन्हें निक, रॉन और अंक के आने की जानकारी दी। सुनहरी और रूपाली ने जल्दी से खुद का एक बार आईने में देखा और फिर बाहर उनसे मिलने के लिए आ गईं। वे तीनों जन्नत बाजार के आंगन में खड़े थे कि ऊपर से जन्नत एक 15-16 साल की लड़की के साथ खड़ी थी। उस लड़की का नाम फुलवा था, जो अक्सर जन्नत के साथ रहती थी। जन्नत बाजार में सुनहरी के अलावा फुलवा ही ऐसी थी जो उसके इशारों की भाषा समझ सकती थी। फुलवा ने उन तीनों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, दिखने में काफी अच्छे लग रहे है ना ये तीनों आदमी। जन्नत ने उसकी बात पर मुस्कुराकर हामी भरी, वो भी ऊपर से उन तीनों की तरफ ही देख रही थी। फुलवा ने कहा, दीदी हमारा बस चले तो हम आपकी शादी करवा दें इनमें से किसी एक के साथ। उसकी बात सुनकर जन्नत के चेहरे पर उदासी छा गई और उसने इशारों में कुछ कहा। उसकी बात समझकर फुलवा भी उदास हो गई और जवाब देते हुए कहा, सही कह रही है दीदी आप, जन्नत बाजार की लड़कियों की किस्मत में कहाँ शादी और परिवार की खुशियाँ लिखी होती हैं। इन सब के बीच सुनहरी और रूपाली बाहर आ चुकी थी। उनके बाहर आते ही सुनहरी अंक और रॉन को जन्नत बाजार दिखाने ले गई, जबकि निक वहीं रूपाली के साथ खड़ा था। साहब, हमारी जन्नत बाजार की एक एक दीवार को अच्छे से सजा दीजिएगा, रूपाली बोल रही थी, जबकि निक उसकी बात का जवाब देने के बजाय इधर उधर देख रहा था। तभी उसकी नज़र ऊपर खड़ी फुलवा और जन्नत पर पड़ी। निक ने उन दोनों की तरफ देखकर पूछा, वो कौन है? रूपाली ने जवाब देते हुए कहा, अरे वो तो जन्नत है, आप जानते नहीं क्या उसे, और वो दूसरी वाली फुलवा है। पता नहीं जन्नत इशारों में सारे दिन क्या बोलती रहती है, बस इसके हाथ और पैर ही चलते हैं, बाकी जुबान नहीं चलती। इसके इशारों की भाषा या तो हमारी सुनहरी ताई समझ सकती है या फिर ये फुलवा, निक ने कहा। मुझे एक बार उससे बात करनी है, तुम कुछ कर सकती हो? रूपाली ने एक आंख दबाते हुए कहा, पैसे दो तो ये रूपाली कुछ भी कर सकती है। और उसके लिए कितने पैसे चाहिए तुम्हें? रूपाली ने कुछ देर अपनी उंगलियों पर हिसाब किताब लगाया और फिर कहा, एक मिनट के पूरे 100 रुपए लेगी ये रूपाली, बताओ कितने घंटे चाहिए? निक ने उसे पैसे पकड़ाते हुए कहा, बस 10 मिनट, बस इतना सा टाइम, बोलते हुए रूपाली का मुंह बन गया। क्या साहब, मुझे लगा 3-4 घंटे तो लोगे ही तुम। एक काम करो, अभी 15-20 मिनट के लिए ताई अपने बाबा से बात करने के लिए जाएंगी, उतनी देर ऊपर जाकर तुम उससे बात कर लेना। वैसे कैसे बात करोगे, बोल तो सकती नहीं, फिर भी मैं फुलवा को बोल दूंगी कि वो जन्नत की बात तुम्हें समझा देगी। निक ने उसकी बात पर हामी भरी। सुनहरी अंक और रॉन को वापस ले आई थी और वहां से कहीं जाने के लिए जन्नत बाजार के पिछले दरवाजे की तरफ गई। उसके जाते ही रूपाली निक को ऊपर ले गई, जहां पर फुलवा और जन्नत खड़ी थी। निक और रूपाली को उस तरफ से आता देखकर वे डर गई और सहमकर थोड़ा पीछे हट गई। रूपाली ने उनके पास आकर कहा, अरे डरने का नहीं जन्नत, ये बस बात करेगा और कुछ नहीं। उसकी बात सुनकर जन्नत ने नामे सर हिलाया और हाथों से कुछ इशारे करने लगी। रूपाली ने कहा, देख तेरे इशारे मुझे नहीं समझ आते, क्या बोल रही है फुलवाइये? दीदी बोल रही है कि उन्हें इन साहब से कोई बात नहीं करनी। फुलवा ने जवाब दिया, बात तो देख तुझे करनी पड़ेगी, और कौन सी तू अकेली है यहाँ पर, तेरी ये पिट्ठू है ना तेरे साथ। बोलते हुए रूपाली जन्नत के पास आई और पीछे से उसका हाथ जोर से दबाते हुए कहा। रूपाली के वहां से हटते ही दो लड़कियां उस तरफ आईं। उनमें से एक लड़की ने निक की तरफ देखकर कहा, ये चलता है क्या? कहाँ चलना है? निक ने मासूमियत से कहा। उसकी बात सुनकर फुलवा और जन्नत मुंह दबाकर हंसने लगी। उन्हें हंसता देखकर वे दोनों लड़कियां वहां से चली गईं। निक ने जन्नत को हंसते देखा तो उसकी तरफ देखकर सोचा, मेरी गुड़िया भी बिल्कुल ऐसे ही हंसती थी, बिल्कुल वही शक्ल, वही मासूमियत। तुम जो भी हो, यहाँ पर क्यों हो? वो उसे देखकर उसमें खो गया कि तभी जन्नत ने उसे इशारों में कुछ कहा। उसे उसकी बात समझ नहीं आई तो उसने फुलवा की तरफ देखकर पूछा, ये क्या बोलना चाहती है? फुलवा ने कहा, ये बोल रही है कि वो लड़कियां आपको अपने साथ कमरे में चलने को बोल रही हैं, आगे आप खुद समझदार हो। फुलवा के बोलते ही जन्नत और फुलवा फिर से हंसने लगी। उनकी बात सुनकर निक का चेहरा उतर गया। उसने आगे कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। उसके जाते ही जन्नत के चेहरे पर चिंता की लकीर आ गई और उसने फुलवा से इशारे करते हुए कुछ कहा, मुझे भी यही डर लग रहा है कि कहीं ये जाकर हमारी शिकायत नहीं करते, अगर ताई को पता चला तो वो हम दोनों को बहुत मारेगी। एक बार के लिए सुनहरी ताई को तो फिर भी दया आ जाएगी, लेकिन रूपाली ताई वो तो हमारी एक नहीं सुनेगी। बोलते हुए फुलवा की आवाज में डर साफ छलक रहा था। जन्नत भी इसी बात को सोचकर काफी घबरा गई थी। उसने जल्दी से झुककर इधर उधर देखा तो उसे निक कहीं नहीं दिखाई दिया।
कहीं दिखा आपको वो? फुलवा ने पूछा। जन्नत ने ना का इशारा किया। जरूर हमारी शिकायत लगाने गया होगा, हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, फुलवा ने कहा। वो रूपाली से काफी घबरा रही थी, इसलिए जन्नत ने उसे शांत करने के लिए अपने सीने से लगाया और उसे प्यार से सहलाने लगी। उसके ऐसा करने पर फुलवा को काफी अच्छा महसूस हो रहा था। वहीं जन्नत से बात करने के बाद निक नीचे गया तो रूपाली और सुनहरी रौन और अंक के साथ खड़े होकर निक के आने का इंतजार कर रही थी। सुनहरी ने निक को वहां देखकर कहा, क्या साहब, आखिर आपने अपनी जिद पूरी कर ही ली ना? मैं सब जानती हूँ, इस रूपाली ने पैसे लेकर आपकी बात जन्नत से करवा दी होगी, आपके चेहरे की चमक सब बता रही है। हाँ मैं उसके पास गया था पर मेरी कोई बात नहीं हुई, वो तो बोल ही नहीं सकती तो मैं क्या बात करता उससे, निक ने सामान्य तरीके से जवाब दिया ताकि उन्हें उस पर कोई शक ना हो। रूपाली ने कहा, ताई तो फालतू ही उस जन्नत के भरोसे उछलती फिरती है, बोल तो सकती नहीं है वो, बस थोड़ा सा अच्छा नाच लेती है, बस ये तो पागल हुई रहती है उसके पीछे। मैं भी देखती हूँ कि कब तक आप उसे धंधे पर नहीं बिठाओगी, देखना जिस दिन अच्छी डील आई उस दिन आप खुद उसके लिए उसे तैयार करोगी। निक को रूपाली की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। निक ने कहा, अगर वो बोल नहीं सकती तो जरूरी है क्या उसे इस काम पर लगाना? उसकी बात सुनकर रूपाली और सुनहरी हैरानी से देखने लगी। माहौल बिगड़ते देख अंक ने बात संभालते हुए कहा, ये थोड़ा ज्यादा इमोशनल है, किसी को देखकर इसे दया आ जाती है। सुनहरी ने निक को आंखें दिखाते हुए कहा, देखो साहब, आप मेरी जन्नत से दूर रहोगे। अंक ने कहा, हाँ हाँ ये जन्नत से दूर ही रहेगा, आप उसकी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। रॉन ने कहा, अच्छा ठीक है, फिर अभी के लिए हम चलते हैं, एनजे सर तो यहाँ पर रुक ही रहे हैं। निक ने हड़बड़ाहट में कहा, नहीं तुम दोनों रुको, मुझे कुछ जरूरी काम है इसलिए मैं पहले वो करके फिर आ जाऊंगा, कहीं कोई पुलिस वुलिस का चक्कर तो नहीं है आप लोगों का? निक को हड़बड़ी में देखकर रूपाली को शक होने लगा। निक ने खुद को नॉर्मल किया और कहा, हम कोई पुलिस वगैरह से डरते नहीं हैं और ना ही इन सब चक्करों में पड़ते हैं। अंक ने आगे कहा, तुम लोगों को देखकर लगता नहीं है कि तुम इतने सालों से जन्नत बाजार को चला रही हो, इतना भी क्या डरना पुलिस से? अरे पुलिस तो अपनी जेब में रहती है, ये रूपाली भी ना, पता नहीं क्यों इसे हर आदमी सीक्रेट एजेंट लगता है। एक तो तू ये मोबाइल में वेब सीरीज देखना बंद कर, जब से ये शुरू किया है तब से इसे सब जासूस लगने लगे हैं, और रही बात पुलिस की तो अपनी पहुंच बहुत ऊपर तक की है, वरना ऐसे इतने सालों से जन्नत बाजार से लड़कियां विदेशों तक नहीं जाती, सुनहरी ने खुद की शेखी बघारते हुए कहा। उसकी बात सुनकर निक, रॉन और अंक एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सुनहरी की बात से ये बात अच्छे से समझ आ गई थी कि इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, कोई ऐसा आदमी इनके साथ मिला हुआ था जो कि इनकी सब तरह से मदद कर रहा था, पुलिस से बचाने से लेकर चोरी छुपे लड़कियों को दूसरे देश में भेजने तक। अभी मुझे जाना होगा, तुम दोनों यहाँ का देख लेना, कहकर निक हड़बड़ाहट में वहां से चला गया। उसके इस तरह जाने से सुनहरी और रूपाली के साथ साथ अंक और रॉन भी हैरान थे कि आखिर अचानक उसे कहाँ जाना पड़ रहा था।